नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं की ऊर्जा और उनकी सजगता स्वर्णिम भारत की गारंटी है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की जाएगी रिपोर्ट। निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा को 51,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और सर्द पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत। मौसम विभाग ने कहा, 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में और होगी बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनसीसी कैडेट की ऊर्जा और उनकी सजगता स्वर्णिम भारत के निर्माण को संभव बनाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी ने हमेशा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी है।
असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अत्यंत गर्व होता है।
2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब करीब 14 लाख थी, आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति के बिना देश के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने भारतीय युवाओं के सामने उपस्थित चुनौतियों को कम करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है।
कोई भी सेक्टर हो, भारत की युवा शक्ति भारत के टैलेंट के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना भी मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति हो या देश, उसका सामर्थ्य तब बढ़ता है जब वो अनावश्यक बाधाओं से पार पा लेता है। मुझे संतोष है कि भारत में युवाओं के सामने अनेक बाधाओं को, जो भी जब रही, हमने पिछले 10 साल में उन सारी बाधाओं को हटाने का काम किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इसकी गारंटी लेते हैं।
बैंक कहता था कि लोन चाहिए तो पहले कोई गारंटी दो। 2014 में देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया तो मैंने कहा, अपने देश के युवाओं की गारंटी मैं लूंगा। हमने बिना बैंक गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। पहले 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिलता था, अभी सरकार के तीसरे टर्म में हमने इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे एक देश एक चुनाव के विमर्श को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है, हर कोई अपने विचार व्यक्त करे जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो। भारत के युवाओं को भी मैं आज विशेष रूप से आग्रह करता हूँ, एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूँ, माय भारत के वॉलेंटियर से आग्रह करता हूँ, एनएसएस के साथियों से आग्रह करता हूँ, हम जहाँ भी हो इस डिबेट को चलाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, डिबेट का नेतृत्व करें। हम बहुत बड़ी मात्रा में इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है।
युवा शक्ति विकसित भारत की थीम पर आधारित इस आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट भी भागीदार बने। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। वक्फ विधेयक पर विचार के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज समिति की अंतिम बैठक में सभी 44 संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें से 14 सुझावों को मंजूरी दी गई है, जबकि 32 अन्य सुझावों को नामंजूर कर दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मी बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आगामी बजट में घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय रणनीतियों की झलक देखने को मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि उत्पादन की लागत कम करने और किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाने के लिए समय समय पर बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि खेती में किसानों के लिए लाभ और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कई प्रयत्न चल रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और उसके अंतर्गत कई चीजें कर रहे हैं कि अगर गांव में पैदा करता है तो शहर में जो दाम मिलते हैं, गांव और शहर के अंतर बहुत होता है, वो अंतर कैसे कम हो पाए और किसान के पास ज्यादा पैसे कैसे आ पाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आज गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई संत भी पवित्र स्नान में गृहमंत्री के साथ थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में भारत और दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा कई साधु और संतों से मुलाकात की। मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ संपूर्ण विश्व को समानता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी आज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। महाकुंभ के दौरान अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव कम होने और धूप खिलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है। विभिन्न स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ा है। हालांकि डेहरी, छपरा, मोतिहारी, जमुई, बक्सर, बांका, दरभंगा और गया जिले में न्यूनतम पारा अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 2 दिनों तक किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क, आकाश मुख्यतः साफ एवं प्रदेश के अधिकांश भागों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। सुबह के समय हिमालय की तराई के जिलों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है।
निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा को 51,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर्मचारी पर दाखिल खारिज के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। निगरानी की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई है। राजद सांसद मीसा भारती लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज दानापुर व्यवहार न्यायालय में पेश हुई। उन पर बिना प्रशासनिक अनुमति के रोड शो करने का आरोप है। अररिया समाहरणालय सभागार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी की अध्यक्षता में कोसी बेसिन विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की गई। कैमूर के टाउन हाई स्कूल में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो की अहमदाबाद इकाई की ओर से विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक परेश सरवैया ने छात्र छात्राओं को अंतरिक्ष विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की अध्यक्षता में सारण समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़कों पर सुरक्षा चिन्ह लगाने, अवैध निर्माण को हटाने और जानवरों की सड़क पर आवाजाही रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 14 जनवरी को ही लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक इमरान मसूद ने दी है। बेगूसराय जिले के बकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शकरपुरा गांव से पुलिस ने एक अपराधी को 2 पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धपकला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर खेत में छुपाकर रखी भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। मुंगेर शहर के शहीद स्मारक के पास गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने समान काम समान वेतन समेत 21 सूत्री मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। अररिया की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 2 महिला समेत 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में 30 जनवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी गंगा पथ पर आज एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, इससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के कारण आज से शुरू होने वाली उनकी प्रगति यात्रा के 3रे चरण के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी पत्र के अनुसार यात्रा का 3रा चरण अब कल पूर्णिया से शुरू होगा। प्रगति यात्रा के 4थे चरण का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार 4था चरण 1 फरवरी से भागलपुर से शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं की ऊर्जा और उनकी सजगता स्वर्णिम भारत की गारंटी है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। बजट सत्र के दौरान सदन में पेश की जाएगी रिपोर्ट। निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा को 51,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और सर्द पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत। मौसम विभाग ने कहा, 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में और होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।